हम लोग शुरू करते हैं।
हाँ जी।
नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो उवर्चायारं नमो लोय सप्तसाहूरं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंद कुंदात्यो जय धर्मो सुमंगलं सर्व मंगल्य मंगल्यं सर्व कल्याण कारकं सिद्धानां सर्व धर्मानां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं भुवन में सार बीत राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमो प्रयोग समारी हाँ, हम लोग सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर चर्चा कर रहे थे और पर ले संकेत ने कांक्षित चिकित्सा पर हमने बहुत कुछ चर्चा कर ली थी और अमूर्त दृष्टि अंक पर भी हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन। अभी तक किसी को इसमें क्वेश्चन है? किसी को भी इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन या कुछ तो एक अष्टपाहुड ग्रंथ है उसमें पहला पाहुड़ है दर्शन सॉरी उसमें पहला पाहुड़ है दर्शन पाहुड़
अनुभव जी अनुभव जी एक क्वेश्चन आपको पूछती हूँ ये
उसकी टीका हाँ हेलो
वो क्वेश्चन पूछ रहे
अनुभव जी अच्छा हाँ बताइए
हाँ ये मुझे ना एक क्वेश्चन है कि अगर आज क्या हुआ कि आज मेरी हमेशा कहानी रहती है कि कई दफा वो बोलते कि वाद विवाद में नहीं पड़ना और कई दफा वैसे बोलता है कि सत्य का जो है तो सत्य के पक्ष में भी आपको वहाँ खड़ा रहना चाहिए तो और आज क्या हुआ कि हमारे मंदिर में एक वो आए थे वो मुपति वाले थे फिर मैं तो वो तो वो फिर उसने क्या बोला कि सब यू नो कि ये जो स्थानकवासी है दिगंबर है क्या श्वेतांबर है सब मुनि किसी को मिथ्यात्व नहीं है मिथ्यात्व का पाप नहीं लगता है वैसे उल्टा सुलटा वो वैसे तो 5 मिनट वो बोले थे परंतु अभी यहाँ ऐसे कोई आवे और फिर उसको अभी कहाँ तुम उसके साथ आर्ग्यू करो तो फिर कोई नहीं बोले फिर वो 5 मिनट बोलकर फिर चले गए वो ऐसे आए थे दर्शन के लिए फिर वो उसने 5 मिनट बोला तो कई दफा वैसे हमको चुभता भी है कि तभी फिर मैंने तो अपने जो दूसरे है कि जो यूजुअली शास्त्र पढ़ते हैं उसको बोला कि देखो अष्टपाहुड़ में तो ऐसा लिखा है कि और गुरुदेव के प्रवचन में भी आता है कि जो वस्त्रधारी अपने आप को मुनि बोलते हैं वो तो निगोद में जाएंगे तो नहीं मेरा क्वेश्चन है कि फिर ऐसे इसी जगह पर पब्लिक में वैसा कोई आकर वैसा बोले तो कुछ बोलना चाहिए कि नहीं क्योंकि हम लोगों को फिर इतना ज्यादा क्या है कि शास्त्र का आधार वगैरह इतना तो नहीं होता है, तो इसलिए चुप भी रहते हैं। तो आपका जस्ट वो, क्योंकि ये मूर्छा पर भी हम बोल सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन करते हूँ।
बराबर। नहीं, तो वही दर्शन बाहुल ग्रंथ है, उसमें पहला अष्टबाहुल है और उस ग्रंथ की दूसरी गाथा है दंसन मूलोधम। दंसन जो सद्धर्म है उसका मूल दर्शन है, और ऐसा जिनेंद्र देव ने अपने शिष्यों को, यानी उनके शिष्य कौन, गिरधर आदि मुनिराजों को कहा कि धर्म का जो मूल है वह सम्यक दर्शन है, और इसके लिए हे कान वालों तुम सुनो ये गाथा है मूल। दंसन मूलोधम धर्म का मूल दर्शन है, ऐसा जिनवर ने अपने शिष्यों को बोला है, इसलिए हे कान वालों तुम सुनो कि दंसनहीनो न वंदिव्यो, जो दंसनहीन है जिसके पास दर्शन नहीं है, सम्यक नहीं है, वह दर्शन के योग्य नहीं है, उसकी वंदना, वह वंदना के योग्य नहीं है। दंसनहीन दर्शनहीन सम्यक दर्शन से रहित, जिसको दर्शन नहीं पता कुछ, वह वंदना के योग्य नहीं है। हे कान वालों, यानी कि जो योग्य लोग हैं, जिनकी भवितव्यता पक्की है, वो कान वाले, मतलब जो देश में लब्धि तक पहुंच गए हैं, तो हे कान वालों तुम सुनो, यदि तुम्हारे पास कान है तो सुनो कि क्योंकि धर्म का मूल बेसिक दर्शन है, तो इसलिए जो दर्शन से रहित होगा उसकी वंदना नहीं हो सकती, उसको वंदनीय नहीं है, उसको वंदना नहीं करना। अब इसकी जो टीका है वह पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है, दंसन बाहुल ग्रंथ की, दर्शन बाहुल ग्रंथ की, तो उस पर अब उन्होंने दर्शन की, सम्यक दर्शन की बहुत लंबी चर्चा करी है, 7-8 पेज की लिखा है, बहुत सुंदर। राइट, तो उसमें उन्होंने सबसे पहली बात तो करी, क्योंकि हम, क्योंकि अभी दर्शन, सम्यक दर्शन की आचरण पढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने इनका बहुत सुंदर वर्णन किया, इनकी बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने करी, इन 8 अंगों की भी। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला सम्यक दर्शन क्या है, तो सम्यक दर्शन मतलब ये सम्यक्त्व गुण की पर्याय है। सम्यक्त्व गुण यानी कि 3 गुण होते हैं आत्मा के, दर्शन यानी श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण, 3 मुख्य गुण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यानी मोक्ष मार्ग। उसमें जो सम्यक्त्व नाम का गुण होता है उसकी पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं, राइट। और ये सम्यक्त्व नाम के गुण की पर्याय कैसे उत्पन्न होती है, कि ये वाली पर्याय यदि हम कर्मों को देखें तो दर्शन मूलि कर्म की 3 प्रकृतियों का उपशम क्षय हो जाए, क्षयोपशम रहे, मतलब सम्यक्त्व प्रकृति का उदय का उपशम या क्षय, और 4 अनंतानुबंधी, तो ऐसे 7 प्रकृतियां, 3 दर्शन मोहिनी की और अनंतानुबंधी संबंधी 4 चारित्र मोहिनी की, तो 7 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम या उदय से या क्षय से जो स्थिति बनती है आत्मा में, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा के सम्यक होने की पर्याय से सम्यक प्रकट होती है, राइट, ये हम सबको पता है बराबर।
हाँ अनुपम जी, आपका फोन ना थोड़ा, आपकी वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा लो आती
अच्छा
है।
कम आ रही है, ओके
हाँ
ओके, 2 सेकेंड,
दोबारा रिपीट करेंगे ये सम्यक सका के
हाँ।
कौन दर्शन मोक्ष के लिए।
अभी ठीक आती है आवाज,
अभी आप बोलो फिर पता चलेगा।
ठीक है, उसमें उन्होंने सम्यक दर्शन की पहले से डेफिनेशन बताई, और उसमें यही बोला कि सम्यक दर्शन मतलब जो आत्मा की सम्यक गुण की पर्याय है वो सम्यक दर्शन है, राइट। और एक तो सम्यक गुण की पर्याय है ये निश्चय पक्ष, और व्यवहार यदि बाहर निमित्त की अपेक्षा देखें तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां, 7, 4+3, 7, ये 7 प्रकृतियों के उपशम से या क्षयोपशम से या क्षय से, उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व, सम्यक्त्व प्रकृति से उदय और क्षय प्रकृति, क्षय क्षयोपशम से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, और 7ों प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक, तो ये सम्यक दर्शन होता है। राइट, ये हम सबको पता है करेक्ट,
हाँ
राइट। सम्यक दर्शन होता है पुमेष्टु गुण की पर्याय, यानी श्रद्धा गुण की पर्याय। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि की वंदना करनी चाहिए और किसी की भी नहीं। वंदना के योग्य वही होता है जिसके दर्शन शुद्ध हो, राइट। तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि सम्यक्त्व गुण तो सूक्ष्म है, उसकी पर्याय केवली गम्य है, तो हम सम्यक्त्व दर्श सम्यक्त्व गुण की पर्याय को नहीं जान पाते, तो हम सम्यक दर्शन को वहां से नहीं जान सकते। और दूसरा, जो सात कर्मों की स्थिति है, तो कर्म भी सूक्ष्म है, तो किस कर्म का उपशम उदय हुआ ये भी हम नहीं जान सकते, तो हम यहाँ से भी नहीं देख सकते। तो हम कैसे पता पड़े कि किसी हमें कैसे पता पड़े कि किसी को सम्यक दर्शन है या नहीं है, राइट। क्योंकि गुण की पर्याय हमको दिखती नहीं, वो केवली गम में है, और कर्म हमको दिखते नहीं क्योंकि वो केवली गम में है, राइट। क्वेश्चन समझ में आया,
हाँ
राइट। तो फिर अब यहाँ पे तो सूक्ष्म विषय है, तो सम्यक दर्शन की पहचान कैसे हो, कैसे हमको पता पड़े कि कोई दर्शनवान है और दर्शनहीन है, किसके दर्शन होता है, दर्शन यानी सम्यक दर्शन, और किसके नहीं होता, क्योंकि हमें तो स्पष्ट उन्होंने निर्देश दिया है, स्पष्ट इस इंस्ट्रक्शन है कि जिसके सम्यक दर्शन नहीं है आप उसके पास भी मत जाओ, आप उसकी वंदना मत करो, क्योंकि वो तो जाएगा ही जहां भी इसको जाना है। यदि आप उसकी वंदना करोगे तो आप भी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ये अगली गाथा में वो बोलेंगे वहां।
अनुभव जी,
हाँ
वंदना
जी,
का क्या, वंदना का क्या अर्थ यहाँ लेंगे?
वंदना यानी कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती में तो जो श्रावक हैं वे साधर्मी हैं, उनकी संगति, उनकी संगति करना, प्रशंसा करना, जैसे देवलोक से सम्यक दृष्टि जीवों की प्रशंसा होती है, तो प्रशंसनीय होता है निचली भूमिका में। और पांचवे गुण स्थान में जो आरिका हो जाती है उनकी वंदना होती है, इच्छामी होता है इन सबको, एलक शिलक को, और ऊपर पांच परमेष्ठियों की पूजन होती है, राइट। तो उनको नमस्कार होता है, नमोस्तु होता है, राइट। तो ये वंदना मतलब इनकी विनय होती है, अपने अपने गुणस्थान के हिसाब से, अपने अपने लेवल के हिसाब से। तो साधर्मी की प्रशंसा, साधर्मी की संगति होती है, अरे सम्यक दृष्टि श्रावक की। आरिकाओं की वंदना वंदामी करते हैं, एलक क्षुल्लक को इच्छामी करते हैं, और मुनिराज को नमोस्तु करते हैं, उनको नमन होता है, पूजन होती है। लेकिन ये सिर्फ सम्यक पदों की ही होती है, जो सम्यक दृष्टि है उनकी ही संगति करनी चाहिए, उनसे ही वार्ता होती है, उनसे ही सीखा जाता है, उन्हीं की बात सुनी जाती है, और किसी के ना तो वचन प्रमाणिक है, ना ही संगति करनी चाहिए, ना ही कोई प्रशंसनीय है, राइट। ठीक है, तो अभी वहां तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी कि हम किसी के सम्यक दर्शन का निर्णय कैसे करें, हमें तो ना सम्यक गुण दिख रहा है, ना किसी के कर्मों का उदय उपशम दिख रहा है। तो फिर उन्होंने बोला, अब देखो हम बताते हैं, सम्यक को सम्यक्त्व से जानना तो कठिन है, वो तो केवल ज्ञानी जानते हैं, लेकिन उसके कुछ बाह्य लक्षण हैं जिसको यदि हम जाने तो हम निर्णय कर सकते हैं कि मुझे सम्यक्त्व है या नहीं, या सामने वाले को सम्यक्त्व है या नहीं। ठीक है, तो
हाँ
सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण आपको पता है क्या है?
तो उसको
सम्यक
हम
दर्शन का
व्यवहार
बाह्य
सम्यक दर्शन, बाहर से जो दिखता है वो व्यवहार सम्यक दर्शन दिखेगा ना, बाकी
नहीं, हम सम्यक दर्शन के बाह्य लक्षण की बात कर रहे हैं, मतलब जो सम्यक्त्व गुण के जो कुछ भी बाहर होगा उसको बाह्य बोल देंगे, राइट। और मतलब सम्यक्त्व से तो हमको पता नहीं पड़ रहा है कि उस गुण की पर्याय सूक्ष्म है, हमको वो सात प्रकृतियों से पता नहीं पड़ रहा है क्योंकि कर्म सूक्ष्म है, तो वो तो केवल जानते हैं। अब हमें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा उसका कंक्लूजन निकालने के लिए, वेदर उसको सम्यक दर्शन है या नहीं, राइट। उस सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण है आत्मानुभूति, बोलते हैं ना गुरुदेश, बोलते हैं आत्मानुभूति सो सम्यक दर्शन है, राइट। हेलो, आत्मा की अनुभूति करना सम्यक दर्शन है, लेकिन आत्मा की अनुभूति ये जो पर्याय है ये ज्ञान गुण की पर्याय है, दर्शन गुण की पर्याय नहीं है, करेक्ट। अनुभूति करना या निवेदन करना, अनुभव करना, महसूस करना, राइट, उसको फील करना। तो ये जो अनुभूति होती है ये ज्ञान गुण की पर्याय है। किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की, राइट। सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? सम्यक गुण की, दर्शन गुण की। तो दर्शन गुण से ज्ञान गुण की पर्याय अलग है, राइट। तो आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन कहना ये व्यवहार है, उपचार है, क्योंकि ज्ञान गुण की पर्याय को दर्शन गुण की पर्याय का कह रहे हैं। आप स्वतंत्रता को देखिए जिनागम की, दो द्रव्यों के बीच की तो बात जाने दो, दो गुणों के बीच में, दो एक ही द्रव्य के दो इतने निकट के गुण, उन गुणों के बीच में भी एक दूसरे का उपचार करना वह व्यवहार का कथन कहलाता है। तो आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन कहना ये व्यवहार है, लेकिन ये कैसा लक्षण है? ये उसका अविनाभावी लक्षण है कि जिसको आत्मानुभूति होती है उसको सम्यक दर्शन होता ही है, ये नियम है। मतलब आत्मानुभूति होगी तो उसके सम्यक गुण की पर्याय सम्यक रूप परिणमेगी, इसके मिथ्यात्व नहीं होगा। तो हम आत्मानुभूति से जानते हैं कि उसको सम्यक दर्शन है या नहीं, राइट। हेलो, करेक्ट, ठीक है। तो उस पर पंडित जी साहब ने लिखा, इसलिए यदि खुद को सम्यक दर्शन हो तो खुद को कैसे पता पड़े कि स्वयं को यदि निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हुई हो, यदि स्वयं चिदानंद आत्मा का अनुभव किया हो तो फिर पता पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि आप सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि तो फिर यानी कि आत्मा की अनुभूति हो सकती है कि नहीं हो सकती? कि बिल्कुल होती है। यदि किसी के जीभ पर रसगुल्ला रखेंगे तो उसको स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही चिदानंद निर्विकारी हमारे चैतन्य देव, हमारी आत्मा, भगवान आत्मा, जब वह दृष्टि में आता है तब उसकी निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब वह उसका रसास्वादन, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति पता पड़ती है। क्योंकि जब हम पर द्रव्यों की अनुभूति ले पाते हैं, हम बाहर के द्रव्यों का स्वाद ले पाते हैं, यानी कि हमारे ज्ञान में उनका सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो फिर स्वयं का ज्ञान क्यों नहीं होगा? तो अपने सम्यक पर तो पता पड़ जाता है, राइट। वापस उठाया कि लेकिन चर्चा तो दर्शन ही इनको वंदना ना करने की, जिसको वंदना करेंगे उनको दूसरा होगा। अब दूसरे को आत्मानुभूति हुई या नहीं हुई कैसे पता पड़ेगा, राइट। अब उसमें उन्होंने बोला कि देखो, दूसरों की आत्मानुभूति जानने के क्या लक्षण है, तीन लक्षण और हैं, राइट। क्योंकि आत्मानुभूति ये सम्यक दर्शन का मुख्य लक्षण है। इसके अलावा हम जितनी भी कहानी बोलेंगे वो बाहर की होगी और वो फूल प्रूफ नहीं होगी, उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। ठीक है, तो आत्मानुभूति सामने वाले के पाई जाती कि नहीं पाई जाती उसकी अपन चर्चा, उसकी अपन निर्णय कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले से यदि हमें उसका मानस पता पड़ जाए, हम उसके अंतरंग मन के विचारों को जान लें, वो हमें उसकी संगति से पता पड़ेगा। तो ये बहुत कठिन काम है किसी के मन को जानना। लेकिन यदि वो नहीं हो पा रहा हो तो किसी के वचन आप सुनो। तो वहां पंडित जी साहब ने लिखा, जिसके वचन आत्मा की बातों से, आत्मा की महिमा से प्रभावित रहते हैं, जैसे हम किसी बहुत अच्छी जगह जाएं और हम वहां से वापस आए तो हम किसी से भी चर्चा करते तो हम यही बोलते हैं, वहां तो बहुत मजा आया, वहां तो बहुत अच्छा है, आपको वहां जाना चाहिए। तो हम कहीं से भी बहुत अच्छी से आते हैं, पंच कल्याण को देखते आते हैं, या किसी की शादी से आते हैं बहुत अच्छी, या हम किसी अच्छी जगह को देख कर आते हैं, तो आने के 5-10 दिन हमको वो धुनी लगी रहती है, अरे यार आप भी वहां पर हो गए, क्या गजब का था, कितना अच्छा था वहां, तो ऐसा भी था, अरे आप क्यों नहीं गए, आपने तो मिस कर दिया, राइट। हम करते, हमारी आदत होती कि नहीं होती?
होती है,
राइट। तो वहां पर जैसे था कि जिसने आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करी है, अब उसने जब आत्मा का ऐसा अपूर्व आनंद चख लिया है और आप उससे चर्चा करने जाओ और उसके वचनों में उस आत्मा की महिमा नहीं आए तो उसने क्या रस चखा, राइट। तो उसको बोला कि वचन से किसी के अंतरंग का निर्णय किया जा सकता है कि यदि उसका वचन आत्मा की महिमा से, जिनेन्द्र देव के तत्व की महिमा से, सर्वज्ञ की महिमा से, मुनिराजों की महिमा से, जिन मार्ग की महिमा से यदि आडोलित हो, वो बहुत उससे प्रभावित और महिमावान हो, विनीत हो, तो उसके शब्दों से इसका निर्णय किया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, यदि वह शब्द भी ना बोलता हो तो फिर उसका आचार, जैसा महावीर भगवान की विशुद्ध परंपरा में जिगंबर आचार शास्त्रों में वर्णित है, यदि शरीर से उसके जीवन में वैसा आचार चल रहा हो, तो वैसा आचार यदि उसके है जिनागम सम्मत, तो उसको हम फिर केवली भगवान का हवाला देकर सम्यक दृष्टि मान लेंगे, यदि वह शास्त्र का उल्लंघन करके उसका आचार नहीं होता हो। लेकिन यदि किसी के जिनागम से विरुद्ध शरीर का भी आचरण है और उसकी बातें कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, तो भी उसने जिनागम की आज्ञा का प्रत्यक्ष विरोध किया, तो उसके दर्शन कैसे होगा, इसलिए वह सम्यक दृष्टि नहीं होगा, उसके वंदना नहीं होगी।
पंडित जी, आपने ये बताया ना कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो बात का आचार विचार और कुर्वाणी ऐसी होए कि
आप गुरुदेव श्री के एक घंटे के प्रवचन सुनते हैं और हमको कितनी बार भगवान आत्मा कैसा है उसकी प्रेरणा मिल जाती, राइट। अब बाकी हम अभी वैसे गुरुदेव श्री जितनी महिमा किसी और के प्रवचन में आपको शायद नहीं, आत्मा की इतनी सुंदर महिमा और कोई शायद नहीं बता पाते हो, बता भी देते हो, बट गुरुदेव श्री को तो सुन के लगता है कि भाई इनमें तो चखा है, इनको तो अनुभूति हुई, तभी तो देखो ये तो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे उसके नशे से, उसकी जो हिलो उनको है, उसकी जो एक क्या बोले मस्ती उनको छाई हुई है, मतलब वो उसी से उनका हृदय अडोलित है पूरे टाइम, पूरा कोई भी विषय चल रहा हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा हो चरण नियोग का, या समयसार चल रहा हो, या पद्मनंदी पंचविंशति का में बाहर के आचार की बात कर रहे हो, शहजाला पढ़ा रहे हो गुरुदेव, लेकिन बात तो घूम फिर की कहां जाएगी कि भगवान आत्मा, प्रभु तू तो शुद्ध है ना, मतलब वो हमें अंतस पता पड़ता है ना उससे। ऐसी आप गुरुदेव श्री को जाने दो, आप पंडित ज्ञानेंद्र राय जी का कोई भजन उठाइए, आत्म अनुभव करना रे भाई, पंडित दौलत राम जी का आत्म रूप अनुपम अद्भुत या ही करो, पंडित भाग सिंह जी का भजन संत निरंतर चिंतित ऐसे आत्म रूप अबाधित ज्ञानी, या आप पंडित दीपचंद जी कासलीवाल का कोई भी ग्रंथ पढ़ो, अंधो प्रकाश चिद विलास, या आप पंडित भागचंद जी साजेड का सत्य स्वरूप पढ़ो, या पंडित टोडरमल जी का मोक्षोर प्रकाशक पढ़ो, आप पंडित दौलत राम जी के नाटक समयसार को पढ़ो, हर जगह जिन ज्ञानियों ने आत्मा का अनुभव किया उन्होंने चाहे तो वचन में बोला हो या अपनी लेखनी में लिखा हो, लेकिन उनकी लेखनी भी आत्मा की महिमा से एकदम रंगी हुई है और उनके वचन तो आत्मा के गीत से भरे हुए हैं। ये पंडित जयचंद जी छबड़ा बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि के निर्णय में यदि करना हो तो उसके वचनों को सुन लो, उसका पूरा मानस पता पड़ जाएगा, अथवा उसके शरीर को योग्य जिनागम से सजा हुआ देख लो, यदि उसने जिनागम से इतर कोई भी वेश धारण किया या कोई भी चर्या उसके जिनागम के विरुद्ध होती है, तो भले ही उसकी बातें भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वह जिनागम की प्रवृत्तियां को मलिन करने वाला है, मतलब उसके लिए जिन मार्ग, उसके हृदय में जिन मार्ग के लिए विनय नहीं, और विनय नहीं मतलब उसने दर्शन का आज्ञा सम्यक्स्वाघात कर लिया, वह वंदनीय नहीं है। बराबर ठीक है। तो जो आपने प्रश्न किया था वो प्रश्न का उत्तर ये है कि देखिए, यदि शक्ति हो, जैसे अकलंक मुनिराज में थी, समंत भद्र मुनिराज में थी, तो वे उस काल में वाद विवाद के लिए भी जाते थे और उस काल में जीवों की कषाय बहुत मंद थी, बराबर। तो वहां वाद विवाद तो मतलब नगरों में काम दवा तो प्रजा सारी आती थी, राजा बैठता था और वहां पर हर एक राजाओं के वादशालाएं होती थी और वहां बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं बैल रहती थी, घंटा रहता था बहुत बड़ा, जिसको भी वाद विवाद करना हो वो घंटे को वहां पर बजा दे, तो पूरे नगर में ढिंडोरा पिट जाता था कि ये वाद विवाद के लिए आए हुए हैं, यदि किसी को उनसे लड़ने की हिम्मत हो तो आओ। फिर जो वहां के पंडित होते थे, ब्राह्मण होते थे वो लोग तुरंत आ जाते थे, तो दो जगह वहां लोग बैठते थे, सारा नगर जुड़ता था, राजा आते थे और वाद विवाद शुरू होता था। और ये होता था कि जो भी जीतेगा, जिसने भी वाद में जिसको हरा दिया, तो जो हारा है उसको सामने वाले का मत मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानते, नहीं होगा, सबको मानना पड़ता था, राइट। तब पहले लोगों की कशा इतनी सरल थी कि यदि आप मुझे सही युक्ति से समझा दो तो मैं समझ जाऊंगा, मैं आपकी बात सही मान लूंगा, राइट। तो फिर पहले बहुत सारे ऐसे होते थे, अकलंग देव आचार्य ने कितना बौद्ध धर्म के साथ किया, वाद विवाद हुआ उनका इतना बड़ा। नमद भद्राचार्य तो खुद ही लिखते हैं कि मैं सिंह की तरह विचरण करता हूँ, जिसमें शक्ति हो तो आओ मुझसे वाद विवाद करो। उसको पता है कि इससे सामने वाले चीज की कोई सांप्रदायिक विद्वेष है, उसकी भावनाएं नहीं तेज पहुंचेंगी, उसका बस मान टूटेगा कि मेरी बात सही है, जैनों की बात गलत है। तो वो अलग काल था। लेकिन जिस काल में हम लोग अभी रह रहे हैं, इस काल में हमें तो गुरुदेव श्री आदर्श हैं, ऐसी गंदी गंदी किताबें उनके बारे में लिखी गई। एक किताब थी, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी कभी नहीं देखी, सुनगढ़ समीक्षा करके एक प्रॉपर एक किताब लिखी गई 250-300 पेज की। उसमें गुरुदेव श्री के बारे में बहुत अभद्र भाषा में और बहुत ही ऐसी बातें जो आप और हमको सुन भी ना पाए, ऐसी भाषा बातें लिखी और पंडितों ने वहां छपवाया और हर जगह बांटी, राइट। उसने बहुत बुरा लिखा गुरुदेव श्री का, बहन श्री का, फिर उन्हें बहुत आक्षेप लगाए। और जैसे हम लोग किसी के ऊपर जैसे आरोप लगा भी नहीं पाए, जो गंदे आरोप होते हैं, ओछे होते हैं, जो अच्छे लोग बोलना भी नहीं पसंद करते, तो इतनी सारी बातें उन्होंने प्रॉपर उसको एक बड़ी ग्रंथ जैसा बनाकर सोनगढ़ समीक्षा करके बहुत बटवाई, गालियां लिखी हुई है, बुरा लिखा हुआ है उसमें। बट गुरुदेव श्री की देखो तो अब अगला जयचंदी छाबड़ा ने बोला कि चलो तुमको इन सब से भी निर्णय नहीं होता तो हम थोड़े और बाहर के लक्षण बताते हैं। तो उन्होंने चार लक्षण बताए, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। ये इसी को जानने के और बेहतर कारण है, ये बहुत बेहतर लक्षण है। तो जो प्रशम हुआ, प्रशम में मतलब उसको अनंतानुबंधी नहीं है ना, उसकी चली गई ना, हमको यही तो जानना, हमको कर्म नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये तो पता पड़े कि इसके अनंतानुबंधी है कि नहीं। तो प्रश्न ये बोलता है कि जैसे लौकिक जनों की कषाय होती है ना, वैसे उसकी कषाय नहीं होती, तो वो व्यर्थ वाद विवाद में नहीं पड़ता, वो व्यर्थ दूसरों से लड़ने नहीं चाहता, और उसको मेरी बात सब माने ऐसा गुमान भी नहीं होता। कोई विनय से उससे पूछने आए तो शांति से समझा देता है, कोई यदि उसका विरोध करे तो अपना कर्म का उदय जानकर वहां से या तो हट जाता है, अथवा शक्ति हो या वहां पर जिनागम की मर्यादा पर कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा हो तो वहां पर उसी तरीके से संघर्ष भी करता है, युद्ध भी करता है, लेकिन उसके वैसी हट वैसा मान नहीं होता जैसे मिथ्या दृष्टियों के होता है, राइट। तो यदि को वहां पर स्पष्ट दिखाते, यदि किसी को आप नमस्कार ना करो और यदि उसको समस्या हो जाए, मतलब उसके प्रशम गुण नहीं है, वो वंदनीय नहीं, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वे अपनी निंदा में और प्रशंसा में समान होते हैं। कभी 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 कुछ मुनिराजों को प्रॉब्लम हो जाती है कि इनने नमस्कार नहीं किया, तो वहां पर, और दादाजी तो ऐसा बोलते थे, दादाजी मतलब यहाँ पर होता था, बहुत विरोध भी था, तो कोई सामने से मुनिराज निकलते थे तो दादाजी लोग खड़े नहीं होते थे, क्योंकि वो लोग को तो बहुत था पहले गुरुदेव श्री के, तो सब एकदम पक्के लोग थे वो लोग, तो वहां पर फिर वो मुनिराज पूछते थे, बहुत बड़े मुनिराज, मतलब बहुत बड़े मुनिराज, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका यहाँ पंचकल्याणक था, तो वो रोज घर के सामने से निकलते थे और दादाजी उसी टाइम बाहर बैठे होते थे, तो पूरा सर निकलता था और वो खड़े नहीं होते थे। तो फिर उनके पास खबर पहुंचाएगी दादाजी के पास कि भैया कपूरचंद जी आप खड़े नहीं होते हो तो अच्छा नहीं लगता है, मुनिराज जी भी आज ऐसा बोल रहे थे। तो दादाजी बोलते हैं यदि वो ये देख पा रहे हैं कि कौन खड़ा हो रहा कौन नहीं हो रहा, तो हमें तो पंडित दौलत राम जी ने बोला है जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह, जो ख्याति लाभ पूजा दी को गुरु नहीं है। तो दादाजी ऐसे स्पष्ट बोल देते थे, ऐसे पंडित कैलाश चंद जी थे ऐसे, तो ये लोग स्पष्ट ये है वहाँ लिखा पंडित जयसिंह छाबड़ा में कि यदि उसको अपने को मनवाने का लालच है, यदि वंदना कराने में उसके यदि कीर्ति के लिए हुआ है तो उसके प्रशम गुण नहीं है। यदि किसी को अपनी कीर्ति का या कोई यदि उसकी निंदा कर ले तो बहुत गुस्सा आ जाता है, उसको बहुत क्रोध होता है, उसका जवाब देता है व्यर्थ में वादे वादे उलझता है, मतलब उसके प्रशम नहीं है, प्रशमता नहीं है, मतलब उसके नैदानुबंध की कषाय है और वो है मतलब सम्यक दर्शन नहीं है, चौथा गुण स्थान नहीं है।
राइट,
हमारी नहीं हो तो हमको तो वहां पर ये जानकर कि व्यर्थ में नहीं उलझे। अब जिनकी हो हम जो हमारे साधर्मी है, जिनकी हमें यू नो हमारा ग्रुप है, जिनकी हमें चिंता है, जो समझते हैं, जिनकी कषाय मंद है, हमें उनको समझा देना, भैया देखो मैं ऐसा बोला था लेकिन आगम की बात ऐसी नहीं है, तो आप लोग देख लेना। तो जिनसे हमको प्रीति हम उनको तो समझा दें, जिनकी कषाय नहीं बढ़ेगी। बट जिनको नहीं मानना है तो छोटे दादा भी वो कहानी सुनाते हैं पंचतंत्र की, कि एक बंदर था और एक चिड़िया थी, बारिश का मौसम आ रहा था, चिड़िया बोलती है बंदर से बार बार कि तुम अपना घोंसला बना लो, बारिश आएगी तुम परेशान हो जाओगे। बंदर सुन लेता था, फिर चिड़िया बोलती थी देखो तुम बना लो। फिर एक दिन बारिश आ गई और चिड़िया अपने घोंसले में चली गई और बंदर बाहर बारिश में भीगने लगा। चिड़िया ने उससे बोला देखो मैंने तुम्हें टाइम पर बोला था ना, तुम्हें भी अपना बना लेते घोंसला, तो तुम देखो आज भीगते नहीं, तुम्हें लेकिन बात ही नहीं सुननी होती है। तो बंदर इतना इरिटेट हो गया और वो गया चिड़िया के पास और उसने अपने एक हाथ से उसके घोंसले गिरा दिए, बोला अब तुम घोंसला बना लो। तो दादा बोलते हैं कि देखो अच्छी बातें भी उनको समझाई जाती हैं जिनकी कषाय मन हो, जिनको समझ ना हो, नहीं समझना चाहते हो, बोलना अपना अहित करना है, उनको लगेगा कि आप उनका विरोध कर रहे हो, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप तो उनको करुणा से बोलते हो कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसको गलत लेंगे तो हम किसी की क्यों। तो जिसको समझना हो, मुनिराज भी हर किसी को उपदेश नहीं देते, तो अकंपनाचार्य ने इतने बड़ी उज्जैनी नगरी में गए, इतने सारे वहां पर धर्मात्मा श्रावक लोग थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि कोई भी मुनिराज किसी को धर्म का भी उपदेश नहीं देगा, सारे मुनिराजों का मौन है। तो देखो आचार्य कितना ऊंचा सोचते हैं कि देखो यहाँ पर धर्म का भी उपदेश देंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों के मिथ्यात्व तीव्र है, वो उल्टा होगा, और वो हुआ। सुसागर मुनिराज को नहीं पता था आचार्य के निर्देश का, तो उन्होंने वाद विवाद किया और देखो इतना बड़ा सात मुनिराजों पर उत्सर्ग हुआ फिर। राइट, तो मुनिराज भी बहुत विवेक चाहते हैं, हमारी शक्ति नहीं हो और हमको किसी को व्यर्थ में, क्योंकि हमको पता है कि सामने वाले नहीं मानने वाले, और अब तो विरोध इतना बढ़ गया हम कुछ भी बोलेंगे उनको बुरा ही लगेगा। राइट, तो देखो अभी भी हम लोगों ने जो सूरी मंत्र पर कितना उन्होंने बुरा बोला एक आचार्य ने, तो भी अपन लोगों ने कितने शांतिपूर्ण अपनी गोष्ठियां करी कि अपने लोग बस जान जाए वो नहीं बहकावे में आए। तो हमारा तो काम यही है कि हम प्रमाण से उन लोगों के बीच बात करें जो सुने, जिनको नहीं सुनना है कोई बात नहीं, बात उन तक पहुंच जाएगी, जैसे गुरुदेव श्री की पहुंच ही गई बात और अब धीरे धीरे वो मानने लगे कि हाँ वो जो कहते हैं वो ठीक है। बस यही है कि उनके अस्पताल में उनका मरण हुआ, ये तो वो तो वृद्धि श्रावक के क्यों नहीं होगा, कोई बात नहीं उसमें। तो ये वाली बातें सारे घुमाने की है, लेकिन जिसने जिन मार्ग को निंदनीय किया है, जिन मार्ग के विरुद्ध बात करी है, उसके नियम से सम्यक दर्शन नहीं है, और यदि नहीं है तो वह किसी भी पद में क्यों ना हो वह वंदना के योग्य नहीं है। जो रेवती रानी की कहानी आती है उसमें दूसरी जगह से एक मुनिराज ने रेवती रानी को जजमेंट बुलवाया, मतलब उनके बारे में बोला कि उनकी कुशल पूछना, और उसी जगह पर एक अभव्यसेन करके दिगंबर मुनिराज थे उनके लिए कुछ नहीं बोला। तो जो छुल्लक वापस वो आए थे इस देश पर रेवती रानी के लिए, उनने सोचा मुनिराज ने वहां मुनिराज बैठे हैं दूसरे, उनके लिए कोई संदेश नहीं दिया, और एक श्रावक महिला उसके लिए बोला कि भाई उनकी कुशल क्षेम पूछना, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो वो पहले गए और उन मुनिराज की उन्होंने परीक्षा करी, तो वे मुनिराज अपनी शौच क्रिया कर रहे थे तो इन्होंने वहां पर घास बना दी। राइट, विक्रिया से अपनी, तो वो घास पर चलने लगे, वहां दूसरी जगह नहीं थी, तो वो समझ गए कि देखो इनके जिनागम सम्मत कार्य नहीं है, इसलिए मुनिराज ने इनको कुछ बोला नहीं। तो देखो कितना स्पष्ट है, मुनिराज बाहर के वेश को नहीं देखते, उनको अंतरंग सम्यक्त्व का निर्णय है तो मुनिराज विनय करते, नहीं तो नहीं करते। तो ये तो अपने प्रथमान युग में कहानियां भरी पड़ी है,
और वहां पर गए तो वहां उन्होंने 25वें तीर्थंकर बना दिए, तो भी रेवती रानी को आगम में इतनी श्रद्धा की तीर्थंकर 24 होते हैं, 25वें हो ही नहीं सकते, हम किसके दर्शन करने जाए, किसी का माया जाल होगा, तो वो नहीं गई। तब वे गए और आपके सम्यक का तो गजब है, आपका दर्शन कितना विशुद्ध है, ये वाली बात है। तो प्रश्न है, और तीसरा उन्होंने बोला अनुकंपा, तो अनुकंपा में उन्होंने ये वाली बात करी कि देखो पंडित जी साहब ने कि देखो सम्यक दृष्टि किसी उसका अंतर इतना करुणामय होता है कि यदि उसको लगता है कि मेरे उपदेश से किसी का दिल दुखेगा, उसकी कषाय तीव्र है, तो वो नहीं करता, वो बोलता है कि चलो इसको बुरा लगे, इसको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वो सही बोल रहा है, उसकी बात को हम काट रहे हैं, तो वो वहां से दूर हट जाता है, वो विवाद में नहीं पड़ता, उसको पता है कि सारे जीव अपने अपने पुण्य पाप के उदय के हिसाब से चलते हैं, और वह बस वहीं पर प्रयास करता है जहां मदद कर पाए। तो अनुकंपा इतनी कि गुरुदेव श्री से बोला गया कि मंदिर बनना है लेकिन पेड़ काटना होगा, तो गुरुदेव श्री ने बोला भाई मंदिर नहीं बनेगा, पेड़ तो नहीं कटेगा, मंदिर बनना हो बन जाए, नहीं बनना हो तो कभी नहीं, पेड़ नहीं कटेगा। ये करुणा, आप अनुकंपा देखो, अभी पहाड़ के पहाड़ काटने के लिए मुनिराज लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पूरा इको बैलेंस पूरा खत्म कर दे, इतने बड़े बड़े जगह पहाड़ के पहाड़ काट दिए जाते हैं, कुंडलपुर का पूरा पहाड़ काट दिया गया है जस्ट एक प्रोजेक्ट के लिए, वहां गुरुदेव श्री ने एक पेड़ कटना था, जब सब ने उनको इतना उन्होंने बोला मैंने क्या जनागम नहीं पढ़ा क्या, तुमको पता नहीं एक पेड़ के आश्रित कितने जीव होते हैं, कैसे कोई ये बोल दे कि पेड़ काट के तुम मंदिर बना दो, नहीं होगा ये। तो ये अनुकंपा जीवों की, ज्ञानी जीवों की अनुकंपा, अनंगरा अजगर के पेट पर आधी है और सामने चक्रवर्ती पिता चक्रवर्ती की, और अब भी मारेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन वो भैया नहीं, उसको कैसे मार दे हम जीते जी, उसको खा लेने दो, हम उसको अगर दान देते हैं। जीवंदर कुमार जा रहे और उन्होंने देखा एक कुत्ता अजमरी स्थिति में, कोई जरूरत नहीं थी, युवराज थे वो चले जाते सीधे, लेकिन तुरंत उसके पास गए और उसको रमुकार मंत्र सुनाया। तीर्थंकर का जी, तीर्थंकर युवराज पार्श कुमार, कोई जरूरत नहीं थी उससे उलझने की, लेकिन बोला नहीं नहीं तुम्हें लकड़ियों का जलाना बंद करो, अंदर नाग नागिन जल रहे हैं। तो ये करुणा, ये अनुकंपा, उनके अंदर दिखावटी नहीं होती, वो जेन्युइन होते हैं। उन्होंने बोला नहीं है तुम भैया देखो वो जल रहे हैं अंदर, मुझमें अवधि ख्याल है, मैं देख पा रहा हूँ तुम नहीं देख पा रहे हो। उससे बोला नहीं निकला तो उसने फिर खोला फाड़ा तो बिल बिलाते हुए नाग नागिन बाहर निकले, तो उन्होंने तुरंत उनको नमुकार मन सुनाया। ये अनुकंपा प्राणियों के होती है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि ज्ञानी के मर्मच्छेदी वचन नहीं होते। अब कोई मुनिराज बन के ऐसे वचन बोले तो उनके अंतरंग अनुकंपा नहीं है, तो उनके सम्यक नहीं है, ऐसा निर्णय करना, ये वहां स्पष्ट दिया है। ऐसी आस्तिक्य है और संवेग है, तो बहुत सुंदर गुण है। फिर इसके बाद वापस बोला कि इतने में भी नहीं समझना है तो क्या करें, तो मैंने तो आज इसलिए इसकी बात करी थी कि उसके बाद जयचंदी छाबड़ा ने ये आठ अंगों की चर्चा करी है कि वो भी नहीं समझ में आए तो इन आठ अंगों से निर्णय करना। इसमें उन्होंने पहला निशंके प्रण में दो बातें करी कि देखो शंका मतलब दिन तत्व में शंका नहीं होना, और जिसको दिन तत्व में शंका होती है उसको आत्मा में शंका होती है, जिसको आत्मा में शंका होती है उसको शरीर आदि में पर बुद्धि होती है, पर्याय बुद्धि होती है, जिसको पर्याय में आत्मबुद्धि होती है उसके नियम से भय होता है, डर होता है, वो डर जाता है कि यार मुझे बीमारी होगी अब मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद क्या होगा, कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, किसने देखा है, क्या देखा है, राइट। तो उन्होंने दो बातें लिखी नेशम के संग में, जो अपन ने चर्चा नहीं करी थी, तो वहां अभी मैं स्वाध्याय कर रहा था उसका, तो मुझे बहुत गजब का वो वर्णन लगा। नेशम के संग में उन्होंने बोला कि देखो जिन वचन में यदि शंका है तो नियम से इन्फेरेंस से हम ये जानते हैं कि वो भयभीत आदमी होगा, उसके साथ भय होंगे, क्योंकि यदि वो जिनागम शंका करता है मतलब आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता मतलब शरीर को आत्मा मानता है, शरीर को आत्मा मानता है मतलब वो डरा हुआ है कि मुझे बीमारी नहीं हो जाए, मैं मर नहीं जाऊँ, मरने के बाद क्या होगा, कल को क्या होगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मेरा जॉब अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, वो हमेशा डरा हुआ है कि पर्याय को करने की ठान ली है, जबकि जिसने जिन वचन को जाना है वो जानता है कि पर्याय तो उत्पाध्याय वाली ये तो चली जाएगी, मैं नित्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हमेशा रहता हूँ, राइट। तो उनमें उन्होंने दोनों चीजें बताई, जिसके भय दिखता हो वो भी मिथ्या दृष्टि है, जिसके
भय यानी कि मैं बाहर की पर्यायों को स्थिर करना चाह रहा हूँ। वहाँ वापस संहिता में प्रश्न उठाया कि देखो भय तो आठवें गुण स्थान तक है, भय प्रकृति का उदय तो आठवें गुण स्थान तक तो भय तो हो सकता है, वो तो कर्म है, राइट? नो कर्म है ना, नो कषाय रति शोक भय विमुक्ता। तो ये जो भय नाम की प्रकृति है ना, तो वो तो आठवें गुण स्थान तक उदय में रहती है, और आप बोल रहे हो कि चौथे गुण स्थान में दृष्टि के भय नहीं होता। तो वहां पर उन्होंने समाधान किया कि देखो भय का मतलब ये नहीं कि डर जाना, डर तो जाते हैं, जैसे सीता जी कैसे डर गई थी जब देशभूषण कुलभूषण पर उपसर्ग हो रहा था, तो राम लक्ष्मण ने उनको उनकी शरण में बिठाया और फिर उन्होंने बोला हम उपसर्ग दूर करते, तुम एक साइड अभी बैठ जाओ, डरो मत, राइट? तो डर तो जाती है। लक्ष्मण को मूर्छा लगी तो राम जी कैसे डर गए कि अब क्या होगा, ये मर तो नहीं गया, क्या होगा, डरते। सीता जी को जंगल में छोड़ा, डर तो गई, तो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, मैं जंगल में क्या करूंगी। अंजना जी को जब उनके ससुर जी ने भी नहीं रखा, उनके मम्मी पापा ने भी नहीं रखा, तो जंगल में गई अपनी सखी के साथ, तो वो भी घबरा गई कि हम ऐसी गुफाओं में कैसे रहेंगे, हम क्या करेंगे, वो भी बार बार मूर्छित हो जाए, डरे। तो उन्होंने बोला देखो डरना, सात भयों से रहित होने का मतलब ये नहीं कि वो डरेगा नहीं, लेकिन वह भय ये होता है कि वह उस भय से अपने अस्तित्व का घात नहीं देखता, वह डरता है और समाधान कर लेता है। जैसे बहुत बड़े बड़े एडवेंचर पार्क होते हैं, राइट, और उसमें बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं, राइट, बहुत बड़े बड़े भयानक वाले झूले, तो कई लोगों को बहुत डर लगता है, तो वो नहीं जाते झूलों में, राइट, करेक्ट। और कई लोगों को एडवेंचर होता है, वो चले जाते हैं। तो जैसे कि मुझे बहुत डर है और मेरे फ्रेंड को नहीं है, तो उस फ्रेंड को यदि मुझे झूले पे ले जाना है तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा जो कुछ होगा नहीं, मजा आएगा, डर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ होगा नहीं, करेक्ट। तो मैं उस झूले पर जा रहा हूँ, मैं कन्विंस हो गया, तो मैं ये मानकर जा रहा हूँ कि वर्स्ट कम वर्स्ट मुझे डर बहुत लगेगा, लेकिन मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, यदि वो गए तो वो आएगी नहीं वापस, तो वो जाते नहीं है, करेक्ट। तो जिसको एकदम ही डर है वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स, हम लोग कितना भी कन्विंस करें वो लोग नहीं जाते। ऐसे कुछ लोगों को होता है कि वो फ्लाइट का उनको बहुत फोबिया होता है, इंडिया में कई लोगों को होता है कि वो फ्लाइट में बैठेंगे तो उनको लगता है कि जिस भी फ्लाइट में बैठूंगा वो क्रैश ही होने वाली है, तो वो कभी बैठते ही नहीं है फ्लाइट में। ऐसे कई लोग हैं, वो लंबा लंबा ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, ऐसे ट्रेन के एक्सीडेंट्स नहीं होते, बट वो फोबिया होता है। तो वहां पर ये बोला कि देखो, वो जैसे कि हम किसी झूले पर बैठते हैं तो किसी को डर लग सकता है, लेकिन यदि उसको निर्णय हो गया कुछ भी होगा मरूंगा तो नहीं, झूला क्रैश तो नहीं होगा, तो वो डरते तो झूलता भी जाता है और डरता भी जाता है, और उतना ही डरता है, मरने के लिए नहीं डरता, बस उतना ही डरता है कि डर लग रहा है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि भयभीत होता है तो वह उतना ही डरता है कि चलो अभी क्या होगा, अब लव कुश लड़ रहे हैं कहीं मर नहीं जाए, सीता जी को डर है राम लक्ष्मण से युद्ध हो रहा है, लेकिन वे उससे अपने अस्तित्व को नहीं मानते कि मर गया तो फिर क्या होगा, उनको पता है कि मर गए तो कोई बात नहीं, अगले भाव में कहीं और होंगे, हम हमारा अस्तित्व थोड़ी ही चला जाएगा, हम तो जीव है ना, हम तो नित्य है ना, तो वे आत्मा की सत्ता को नहीं भूलते, ये उनकी निर्भयता है। और इसीलिए देखो सीता जी को बोला तो उन्होंने सारथी से बोला कि भैया देखो उनने मुझे छोड़ दिया तो मेरा तो जो होना होगा हो जाएगा, वो धर्म को ना छोड़े, राइट। कि इतना ज्यादा हर एक चीज को पॉजिटिवली ले लेना और उस पर इतना कड़क हृदय कर पाना, ये तत्वज्ञानी का ही काम है। श्रीपाल को उनके नगर पर कब्जा कर लिया गया, उनको कोर्ट हो गया 700 लोगों को बाहर, अब आगे क्या करें, निकल जाते, कोई बात नहीं, उनको डर नहीं होता कि कल क्या होगा, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। धन्य कुमार की स्टोरी में क्या हुआ, उसके साथ भाई लोग बहुत चिढ़ते थे क्योंकि मम्मी पापा लोग उसको बहुत प्यार करते थे धन्य कुमार को, और ये कहीं भी जाता था ये कुछ ना कुछ, कुछ भी ना करे तो भी पैसे लेके आ जाता था, रत्न लेके आ जाता था, तब लोग उसको बहुत चाहते थे, तो उनको बहुत ईर्ष्या हुई, तुमने बोला इसको मार देते, राइट। तो वो गए और बोले चलो अपन लोग तो तालाब में जल क्रीड़ा करके आएंगे, और जल क्रीड़ा करने के बहाने गए और उन्होंने पहले उसको धक्का दे दिया कि तुम चलो पहले तुम कूदो। तो जैसे ही वो धन्य कुमार कूदा तैरने के लिए पानी में, तालाब में सब खेलने के लिए गए थे, तो इन लोगों ने ऊपर से बहुत बड़ी शिला नीचे पटक दी और पत्थर फेंकने लगे कि ये बाहर ही ना निकल पाए।
तो वो धन्य कुमार दिखकर घबरा गया, क्या हो रहा है ये, और वो नीचे ही अंदर पानी के अंदर सांस रोक के खड़ा हो गया। और वो देखते लगा, वो लोग हंसने लगे, चलो चलो अब ये तो जिंदा नहीं बचेगा, तो उसने बातें सुन ली। तो उसको इतना बुरा लगा कि बताओ मेरे कारण मेरे भाइयों को इतना परेशानी होती है, अरे बताओ मैं अकारण ही, मेरे कारण कितनी परेशानी होती है लोगों को। उसको बहुत बुरा लगा, तो वो सास के अंदर बैठा रहा। इन लोगों ने देखा वो ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब मर गया, तो वो सब चले गए। अब वो जब वो सब चले गए तो धीरे से बाहर आया पीछे से निकल कर, और उसने बहुत सोचा, बताओ कि मैंने तो चाह नहीं, फिर भी यदि मेरे कारण किसी को इतनी पीड़ा होती है तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं क्यों किसी की कषाय को बिगाड़ने में निमित्त बनूं। अब आप देख रहे हो उसका विचार कैसा है, अभी कुछ पता नहीं है, मम्मी पापा नहीं पता था।
हेलो सचिन भाई, ड्रॉप थे गया
नहीं लाइन में तो छे अनुभव जी। हेलो अनुभव जी, ટ્રાય કરી, આમાં તો દેખાય રહે છે કે કોલ ઇઝ ઓન,
પણ અવાજ નથી આવતો.
હા લેટ મી ટ્રાય અગેન, એક્સક્યુઝ. હેલો જય જીનેન્દ્ર. હા
જય જીનેન્દ્ર. હેલો. હા સોરી આઈ થિંક ડિસ્કનેક્ટ હો ગયા થા. કહાં તક સ્ટોરી ચલ રહી થી, મેં તો બોલતા ક્યાં સ્ટોરી પે થોડી દેર તક. આઈ થિંક તો વો બહાર સબ અપને ભાઈઓ કે બારે મેં સોચ કર કે મેં વાપસ નહીં જાઉંગા, મેં અબ વાપસ નહીં જાઉંગા, તો વો બહાર નિકલ ગયા. અબ જસ્ટ ઇમેજિન કે ઉસને કુછ નહીં સોચા કે આગે ક્યા હોગા. तो ये सम्यक दृष्टि कि ये भय रहित तना होता है, कि वो भविष्य का भय नहीं करते, ए भव का भय नहीं करते, ए अकस्मात या अरक्षा का भय नहीं करते, और वो चलता गया और देखो क्या हुआ, चलते चलते वो हर जगह फिर जाते जाते हुआ राजकुमार बन गया, राजा बन गया आधे राज्य का, राइट. तो ज्ञानियों के फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर का डर नहीं होता कि भाई हमारा क्या होगा, रिटायरमेंट पर क्या होगा. गुरुदेव श्री सब बोल रहे तुम्हें रोटी के भी ठिकाने नहीं, उन्होंने बोला भाई उसका मैं क्या करूं, मुझे मार्ग सही नहीं लगता तो मैं नहीं रह सकता. तो वो स्टार ऑफ इंडिया में एक दिन एक बार खाकर और दूसरे दिन उपवास करके रहे. उन्होंने ये नहीं सोचा आगे क्या होगा, और देखो आगे क्या हुआ, पूरे देश में क्रांति आ गई, देश क्या विदेशों में पंच कल्याणक हो गए, राइट. तो ज्ञानियों के जीवन में वो भाई नहीं, कितनी निडरता, कितनी निशंकता, कितने निर्भय होते हैं वो. ऐसे ही श्री कृष्ण के पिता वासुदेव, समुद्र विजय ने, मतलब वो बहुत सुंदर थे तो उसके कारण जो उनके राज्य की महिलाएं थी वो पागल हो जाती थी उनको देखकर, ऐसा वर्णन आता है. तो सबने शिकायत करी समुद्र विजय से कि इनको आप बाहर मत निकाला करो, हम लोग के घर की व्यवस्था बिगड़ती है. तो समुद्र विजय ने बोला इसको कुछ बोलूंगा, मतलब समुद्र विजय मतलब नेमिनाथ भगवान के पिता और श्री कृष्ण के बड़े पापा और वासुदेव के सबसे बड़े भाई, ये लोग 10 भाई थे, तो वासुदेव सबसे छोटे भाई थे. तो उन्होंने बोला इसको कुछ बोलूंगा ये तो लाडला, इसको बुरा लग जाएगा. तो उन्होंने एक अलग पूरा महल, पूरी एकदम हाईटेक बहुत सुंदर खूबसूरत महल बनाया, और वासुदेव को बोला तुम क्यों इधर उधर घूमते हो, हमने तुम्हारा पूरा एक महल बना दिया, उसी के अंदर जंगल है, बाग है, उपवन है, तुम यहीं पर मस्त रहा करो. तो उनको बड़ा बढ़िया लगा, तो वो उसी वहां पर रहते थे, वही मस्त रहते, तो उनको मजा आता था वहां पर, वो बाहर निकलना उनका बंद हो गया अपने आप.
तो एक दिन कुछ बात हो गई तो वहां जो एक दासी थी उसने उनको व्यंग कर दिया कि अरे तुम्हें पता ही क्या है। तो फिर अब उनको लगा क्या बात है, तो उन्होंने बोला ये तुम जिसको महल समझ रहे तुम्हारी जेल है, तुम्हें बाहर नहीं आने के लिए। उनको इतना बुरा लगा कि बताओ यार ऐसा मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। तो अब देखो ज्ञानी पुरुष है लेकिन नशाएं तो होती है, बट यहाँ सिर्फ भय बता रहे। तो वहां पर तुरंत वो वहां से भागे निकले, शमशान में गए, वहां किसी की बॉडी जल रही थी तो वहां उन्होंने अपने सारे आभूषण उतार के उसके ऊपर फेंक दिए जिससे पता पड़ जाए कि मैं मर गया। तो सबको लगा मर गया और वो निकल गए। अब उन्होंने नहीं सोचा कि वो क्या करेंगे, बट आखिरी में जाके तो क्या हो ही गए ना, वो वासुदेव थे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, राइट। ऐसे ही राजा सैनिक का बेटा अभय था, ऐसे हर बहुत सारी कहानियां है हमारे यहाँ। तो सम्यक दृष्टि का जीवन निश्चिंत होता है, निर्भय होता है। भय वही होता है कि उसको जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ ना हो जाए, अथवा जो पर जो ऐसे भय, ये बड़े बड़े भय नहीं होते कि मरण के बाद क्या होगा, उसको पता है क्या होगा। मरण के बाद जीवन होगा, फिर जीवन होगा, हम फिर जिएंगे, हम फिर आत्माराधना करेंगे, हम मोक्ष जाएंगे, उसको ये निर्णय है। तो ये निशंक तन का भाव बहुत सुंदर डिस्कशन है। आई थिंक हमारा आज का टाइम हो गया, हम और उसमें से उस ग्रंथ के आधार से तीन अंग और देखकर फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन आप में से किसी को?
नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
तो वो ये वाली बातें, मतलब सीधा स्पष्ट है, हमको दर्शन पावर में आचार्य कुमकुम देव को आदर्श बनाए। किसी का यदि बाहर का वेश जिनागम सम्मत नहीं है तो हमें तो उस जगह से हट जाना, हमको नमस्कार तो है ही नहीं। और यदि हमारी ताकत है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन यदि हमको लगे कि उसके बोलने से विरोध ही होगा या लोगों के परिणाम और खराब होंगे तो हमें मौन रहना चाहिए, हमको हट जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें तो गुरुदेव श्री ने ऐसे ही बोला शांति से अपना काम करो, इस काल में लोगों की कषायें बहुत है, तो आप कुछ भी बोलोगे बुरे आप बनोगे, तो इसलिए हमें तो अपना काम करना आराम से। और जहाँ पर लगे कि नहीं ये तो जिनागम की रक्षा का सवाल है, वहां तो हम प्राण भी देने को तैयार है, लेकिन अभी वैसी नौबत बनती नहीं है। तो यदि वैसा कुछ लगे तो हम फिर आगे विरोध भी करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनकी कषायें तीव्र है उनको समझाने से कुछ फायदा होता नहीं है, वो बात उल्टी पड़ती है। तो वो नीति है, वो तो नीति में लिखा हुआ है कि किसी को जो नहीं सुनता उसको नहीं सुनाना चाहिए। समझ में बाकी तो कुछ नहीं, बाकी सम्यक दृष्टि जीवों का निर्णय करना है। और इसके लिए गुरुदेव की बहुत महिमा है कि आप जितने भी फैक्टर पढ़ते जाओगे उसमें हर एक में उनको ए प्लस मिलेगा, और उनका पूरा जीवन ही इतना आदर्श है, क्या बताए। ठीक है, हम इसकी और चर्चा आगे करेंगे, समय दृष्टि के और अंक कैसे होते हैं। आप हाँ। भी क्वेश्चन हो आप लोग सोच के रखिएगा। ठीक है, चिंता नहीं करते,
बहुत ही बढ़िया। क्योंकि गुरुदेव भी हमेशा वो बोलते थे, कोई आवे वैसा छोटी आर्गुमेंट तो वो बोलते हम चर्चा नहीं करते हैं।
यदि तुम्हें समझने के लिए बात करनी हो तो ठीक है, हमें समझानी ऐसे नहीं करनी कि सही कौन है गलत कौन है। तो गुरुदेव श्री ऐसा उनका स्पष्ट था, कितनी गालियों भरे उनके पास पत्र आते थे, कितनी अभद्र भाषा लिखी रहती थी, और राम जी भाई बाबू भाई लोग एकदम गुस्से से तिलमिला जाते थे कि ऐसा कैसे लिख दिया। तो गुरुदेव बोलते थे अरे वो भूले हुए भगवान है।
हाँ।
वो नहीं जानते, वो अपना बुरा कर रहे हैं उसका शहर से, वो उनको नहीं पता ये उदय में आएगी तब कैसे उस उदय को जीतेंगे। तो वो अनुकंपा करुणा, कितनी कितनी समझदारी, कितना बड़प्पन, इतना तत्व ज्ञान जीवन में एकदम अपने पिरो लेना, घोल लेना, मतलब एक शास्त्र विरुद्ध बात उनके 45 वर्ष के जीवन में नहीं, एक जिनागम से विरुद्ध बाहर जाके आचरण नहीं, और फिर भी इतनी सहजता से बोल देना कि मैं अव्रती श्रावक हूँ, जबकि श्वेतांबरों के वो महाव्रती थे, वहां तो उनके मीराज थे बहुत बड़े, और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को पंचम स्थान वाला भी नहीं बोला। कितनी सरलता, कि वो बोल देते कि मैं व्रति श्रावक हूँ तो कोई ऐसा नहीं, हम नहीं मानते। बट कितनी निश्चलता, निशंकता, सहजता, वो मतलब हम सबके सच में आदर्श है। और एक चमत्कार है, इस काल में भी ऐसा जीव हुआ जिसने एकदम कुनकुन आचार्य देखकर महावीर भगवान के मार की ऐसी ऊंची प्रभावना करी। ठीक है, आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग सोच के रखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास से इसकी चर्चा करेंगे। जी मानिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए इन वाणी मां को अंत ना शत बार है।
उसके लिए जय जिनेन्द्र, थैंक यू एवरीवन।
जय जिनेन्द्र, थैंक यू।